कर्मकलापात्मनः। हरे अधियज्ञ भगवती अधोक्षजे सर्वात्मनभावं विदधान्महे मे मां तन्निष्ठविप्राभिहितः सशासः। शब्दार्थ कृपा करके आप सब मेरे बात दोहराइए। एवं इस प्रकार भक्तिमय जीवन बिताते हुए सदा सदैव कर्म कालापम क्षत्रिय राजा के रूप में नियत कार्य आत्मनः अपना स्वयं परे परब्रह्म को आदि यज्ञ परम नियंत्रक परम भोक्ता को भगवती भगवान अधोक्षजे इंद्रिय बोध से परे जो है उसे सर्व आत्मन भाव भक्ति के विविध प्रकार विदधत् संपन्न करते हुए अर्पित करते हुए महिम पृथ्वी लोक को इमाम इस तत्निष्ठा जो भगवान के निष्ठावान भक्त हैं विप्र ऐसे ब्राह्मणों द्वारा अभिहितः निर्देशित सशास शासन किया भूतकाल में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड मोस्ट मर्सिफुल एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। राजा के रूप में मैं अपने नियत राजा के रूप में अपने नियत कार्य कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे। जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है और भौतिक इंद्रियों के बोध के परे हैं वे निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। तात्पर्य तात्पर्य लगभग एक और आधा पेज का है, अर्थात श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भाव को इसमें प्रकट कराया है। भावार्थ प्रभुपाद जी का यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा जो तात्पर्य है ये मेरा दिव्य आनंदमय भाव है, तो बड़े ध्यान से श्रवण करें क्योंकि ऐसे भाव से उत्पन्न जो शब्द है वो हमारे हृदय को स्पर्श कर लेता है और हमारा जीवन तुरंत बदल जाता है आध्यात्मिकता के ओर। तो बड़े ध्यान से श्रवण करें, एक एक शब्द को पकड़ते रहिए। भगवद गीता के पांचवें अध्याय में कहा गया है भोक्ता राम यगत अपसाम सर्वलोका महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस जगत में लोग शांति तथा संपन्नता से रहने के लिए अति उत्सुक रहते हैं। और भगवद गीता के इस श्लोक में साक्षात भगवान शांति सूत्र प्रदान करते हैं। हरेक को समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण सभी लोगों के चरम स्वामी हैं, अतएव वे सभी कार्यों राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि के भोक्ता हैं। भगवान ने भगवद गीता में पूर्ण उपदेश दिया है। अम्बरीश महाराज ने आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वैष्णव ब्राह्मणों से परामर्श करके एक वैष्णव की भांति सारे विश्व पर शासन चलाए। शास्त्रों का कथन है कि भले ही ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कर्मों से कितना ही पटु तथा वैदिक ज्ञान में कितना ही पंडित क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो वह गुरुवत उपदेश नहीं दे सकता। षष्ठ कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरुर न स्याद वैष्णव स्वपाचो गुरु। अतएव जैसे कि यहां पर तनिष्ठ विप्र भी हित शब्दों से सूचित है, महाराज अम्बरीश विशुद्ध भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे, क्योंकि केवल विद्वान पंडित या कर्मकांड में पटु सामान्य ब्राह्मण सलाह देने में कुशल नहीं होते। आधुनिक समय में विद्वान सभाओं में सदस्य राजा राज्य के कल्याण हेतु विधान बनाने के लिए अधिकृत होते हैं, किंतु महाराज अम्बरीश ने साम्राज्य के विवरण के अनुसार देश या विश्व का शासन उस कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा चलाया जाना चाहिए जिसके सारे सलाहकार भक्त ब्राह्मण हो। ऐसे सलाहकारों या विद्याकों को न तो व्यावसायिक राजनीतिज्ञ होना चाहिए, न तो ही उन्हें अज्ञानी जनता में से चुना जाना चाहिए, प्रत्युक्त उन्हें राजा द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। जब राजा या राज्य अध्यक्ष भक्त होता है और भक्त ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करता है तो हर व्यक्ति शांत तथा समृद्ध होता है। जब राजा तथा उसके सलाहकार पूर्ण भक्त होते हैं तो राज्य में कोई अमंगल नहीं हो सकता। सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनाना चाहिए जिससे स्वतः उनका चरित्र उत्तम हो। यश्यस्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वेर गुण तत्र समस्त सूर हरो अभक्त कुटो महाद्गुना मनोरतेन अस्ति दावतो बही। जिसकी भगवान में अविचल भक्ति हो जाती है उसमें देवताओं के सारे गुण रहते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसमें केवल भौतिक गुण आ पाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका मन उड़ता रहता है और ज्वलंत भौतिक शक्ति द्वारा आकर्षित होता रह जाता है। ये भागवतम के पंचम स्कंद के अठारहवें अध्याय के 12वां श्लोक है। कृष्ण भक्त राजा के निर्देशन में जनता भक्त बन जाएगी और तब जीवन को सुधारने के लिए नित्य नए विधान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि जनता को भक्त बनने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह स्वतः शांत तथा निष्कपट बनती है और यदि जनता भक्तों की मंत्रणा लेने वाले भक्त राजा का पथ प्रदर्शन प्राप्त करती है तो वह राज्य भौतिक जगत में नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत में होता है। अतएव विश्व के सारे राज्यों को महाराज अम्बरीश के शासन का आदर्श ग्रहण करना चाहिए जिसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। अम्बरीश महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी जो कि यहाँ पे उपस्थित है, जिनके छत्र छाया के अंतर्गत उनके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करते हुए उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी ललिता विशाखा उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित यहाँ पे जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा मैया जो कि अपने विशाल कमल नेत्रों से कृपा का दृष्टि बरसा रहे हैं हम पर, जिनके कृपा दृष्टि हेतु जैसे तैसे भी हैं हम भक्ति में थोड़े थोड़े लगे हुए हैं, ऐसे जगन्नाथ जी उनके परिकर सहित के पदारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए इस युग के युग अवतारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने इस भौतिक जगत पे गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन पात्र अपात्र ना देखते हुए बिकराए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनके परिकर सहित के पाद कमलों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए इस युग के युग आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने इस भक्ति का प्रवाह पुनः इस धरातल पर जागृत कराए हैं, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंद एवं अन्य भक्त जो डीटी किचन या इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं उनके चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज के इस सत्र के और हम अग्रसर हो रहे हैं। तो इस नवम स्कंद के चौथे अध्याय के किस श्लोक में हम महाराज अम्बरीश के सुंदर जीवन का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। गतः भागवत सत्र में हम महाराज अम्बरीश के भजन कार्य का श्रवण किए। बहुत ही सुंदर रूप में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। सबै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वाचां शिवैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चक्रच्युत सत्कतादय मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्भृत्यगत्र स्पर्शे अङ्गसङ्गमम् ग्रहणां च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलसिया रसनं तद् अर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्य नातु काम काम्यया यतोत्तम श्लोक जन आश्रयारति। बहुत सुंदर भजन का अम्बरीश महाराज का भजन कार्य का वर्णन हुआ है और आज के श्लोक में वही महाराज अम्बरीश का नित्य कार्य का वर्णन कैसे वो राज्य को चला रहे हैं उसका वर्णन और वो नित्य कार्य भी भजन करते करते कितने सरल और सुलभ हो गया वह हम समझने का प्रयास करेंगे। उनका भजन क्या है वो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सबै मनः कृष्ण पदारविन्दयो, उनका मन सदैव कृष्ण के सेवा में लग चुका था। ऐसे मन जब भगवान में लग जाता है तो हम कोई भी कार्य करें चाहे वह हमारे नित्य कार्य हो अन्य लोगों के दृष्टि से भौतिक भले हो वो भी आध्यात्मिक बन जाता है। प्रभुपाद जी का भी हम उदाहरण देख सकते हैं, उनका भी मन सदैव भगवान में लग चुका था, सेवा करते हुए भगवान का ही चिंतन करते हैं। इसलिए हम उनको प्रणाम करते हुए हम कहते हैं नमः ओम विष्णु पदाय, जिसका मति सदैव विष्णु के पद में हो उनको हम नमस्कार करते हैं, नमः ओम विष्णु पदाय। सदैव विष्णु का चिंतन करते हैं, उनका सेवा यह है कि प्रचार करते जाए, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय। ऐसे भक्त जो प्रचार करते हैं वो कृष्ण के प्रिय हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी के लिए भी ये श्लोक लागू हो जाते हैं। सबै मनः कृष्ण पदारविन्द वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वो वाणी से केवल कृष्ण कथा करते थे प्रभुपाद जी, चाहे वो नए भक्त हो या कोई अतिथि हो या कोई धर्म प्रेमी हो, कोई भी क्यों ना हो या राजनीतिक हो या वैज्ञानिक हो, वो प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी भगवत गीता के सिद्धांतों के साथ या भागवत के सिद्धांतों के साथ उन्हें जोड़ देते थे। वाचामसी वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मादन आदिशु, प्रभुपाद जी अपने स्वयं हाथों से मंदिर का मार्जन करते थे, वे अपने भक्तों का सेवा करते थे। शुरू शुरू में हमें सुना भक्तों के द्वारा कैसे वे अपने ही शिष्यों वो कि अपरिपक्व थे, वो हर प्रीति भोज में आते थे और अच्छे अच्छे पकवान खाते थे, चपाती सब्जी चावल दाल, खाने के बाद रसगुल्ला भी खा लेते थे, फिर जाते थे थाली इत्यादि नहीं धोते थे। तब प्रभुपाद जी सब जाने के बाद खुद थाली धो साफ करके मार्जन करके उस स्थान को भी मार्जन करते थे, करो हरिर मंदिर मार्दन आदि शिव श्रुति का अक्र। प्रभुपाद जी सदैव ग्रंथों का अध्ययन करते थे अन्य आचार्यों के द्वारा, और स्वयं जो जो ग्रंथ लिखे उसका भी अध्ययन करते थे। प्रभुपाद जी अपनी भगवद गीता, अपने ही भक्ति रसामृत कृष्ण बुक पढ़ते थे और बहुत आनंद का अनुभव करते थे। और उनके शिष्य जब पूछते कि आपको इतना आनंद क्यों आ रहा है, तो कहा कि ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखे, ये ग्रंथ कृष्ण स्वयं लिखे हैं। देखिए इस संसार में कोई किताब लिखता है लेखक, वो एक बार लिख लेता है वो अपना सारा जितने भी भौतिक भाव है वो उस पे किताब में जब बुद्धि के द्वारा डाल देता है, लिखने के बाद वो एक बार बंद कर देता है और छपने जाता है, उसके बाद वो अपने किताब को कभी हाथ नहीं लगाता है। पर प्रभुपाद जी बार बार इन ग्रंथों को पढ़ते थे, क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ प्रभुपाद जी ने नहीं लिखे, इसे स्वयं भगवान ने लिखे, वो खुद कहते थे प्रभुपाद जी, आनंद लेते थे इसमें और इस प्रकार से कथा श्रवण कर देते हैं। अपने आंखों से मुकुंद लिंगालय इस प्रकार से भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करते थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी एक बार ऑस्ट्रेलिया में आरती करने के बाद श्री श्री राधा गोपीनाथ जी को प्रार्थना किया कि देखिए अब मुझे प्रचार करने के लिए आगे प्रस्थान करना होगा, मैं ये मंदिर अब इन पाश्चात्य देश के भक्तों के हाथ सौंप रहा हूँ, वो अपरिपक्व अवस्था में है, आप कृपा करके उन्हें परिपक्व कीजिए और आप उनका सेवा स्वीकार कीजिए। उनका दर्शन करते हुए प्रार्थना करते हुए वहीं से निकल गए भगवान। और प्रभुपाद जी हमेशा इस प्रकार से हर विग्रह को दर्शन करते थे। कहते हैं कि उनके पास हमेशा या तो राधा रास बिहारी का जो उन्हें अति प्रिय है या राधा लंडनेश्वर, ये दो विग्रह का फोटो हुआ करता था, ये दो प्रिय विग्रह हैं प्रभुपाद जी के लिए। तद्वृत्य गत्र स्पर्श अंग संगमम, और अपने भक्तों के बीच में रहते थे और उन्हें मार्गदर्शन देते थे कैसे मृदंग बजाना है, कैसे संस्कृत पढ़ना है, कैसे बंगाली सीखना है, ये सब प्रभुपाद जी करते थे। और भगवान को भोग अर्पण किए इस प्रकार के तुलसी इत्यादि को प्रभुपाद जी लेते थे, जो भोग लगा हुआ प्रसाद, इस प्रकार से भजन कार्य। पादो हरेर क्षेत्र, प्रभुपाद जी जहां जहां पे भी जाते थे, एक बार जयपता का स्वामी महाराज जी कह रहे थे हम रोज एक नए देश में रहते हैं, हम प्लेन से उतरते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और सीधा वैकुंठ में आ जाते हैं, यानी कि प्रभुपाद जी के मंदिर में आ जाते हैं, वहां पे प्रवचन हुआ, कीर्तन हुआ, फेस्टिवल हुआ, फिर वापस गाड़ी में बैठे, फिर वापस प्लेन में बैठे, दूसरे देश में चले, फिर वापस गाड़ी में बैठे, फिर वापस मंदिर में आए। हम कभी दुबई में क्या हो रहा है या न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, बंबई में क्या है, बंबई कैसा है देखा नहीं, हम केवल राधा रास बिहारी के मंदिर को देखे, उस मंदिर को देखे, इस मंदिर को देखे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी पूरे पूरे विश्व का भ्रमण कितने बार किए, 14 से भी ज्यादा बार किए। तो इस प्रकार से वो उतरते थे, आश्रम में ठहरते थे, यही था। तो पादो हरे, ये पांव से केवल भगवान का धाम का दर्शन का के लिए इस्तेमाल किया करते थे। शिरो ऋषिकेश पाद अभिबंधने, प्रभुपाद जी मस्तक को बड़े प्रेम से जमीन पे लगाते थे और अभिवंदन करते थे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी सारे शिष्यों को पाश्चात्य देश में सभी को बताते थे कैसे भगवान के सामने हमें झुकना चाहिए। और कामम च दास्य ना तो काम काम आया, जो भी है इच्छा वो केवल यह है कि कृष्ण को सब लोग सर्वोपरि करके माने और कृष्ण का संदेश को हर एक जीव इस विश्व पे स्वीकार करे, यही प्रभुपाद जी की इच्छा हुआ करती थी और इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं। इस प्रकार से यह प्रभुपाद जी अपने अपने भजन कार्य में लगे हुए थे। ये अम्बरीश महाराज का भजन कार्य का वर्णन हम श्रवण किए आज, अम्बरीश महाराज के यह नित्य कार्य जो है राज को कैसे वो चला रहे थे उसका हम श्रवण करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि एवं सदा कर्म कलाप आत्मनः, इस प्रकार से वे महाराज अम्बरीश राजा के रूप में, वो भक्त के रूप में ये सब कार्य किए। क्या क्या कार्य किए? सवय मन कृष्ण पदारविंद, ये भक्त के रूप में। अब वो राजा भी हैं तो उनका और एक कार्य हुआ, राजा के रूप में अपने नित्य कर्तव्यों का पालन करते हुए महाराज अम्बरीश ने राजसी कार्यकलापों के फलों को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे। जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है और भौतिक इंद्रियों के बोध के परे हैं, वे निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे और वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। उनको कोई कठिनाई नहीं हुई कि पूरे पृथ्वी का शासन हम कैसे चलाएं। इनका भजन इतना तगड़ा था कि उनका भौतिक जो समस्या है या भौतिक जो कार्य था वो बड़े सरल हो गया। इतना तगड़ा भजन, प्रभुपाद जी का भी इसी प्रकार से वर्णन आता है। प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ के अनेक अनेक संस्थान को चला रहे हैं, पर प्रभुपाद जी को कोई कठिनाई नहीं। प्रभुपाद जी अपने भजन में एकदम निष्ठावान पक्के हैं। सुबह प्रातःकाल वह 2 बजे उठते थे और ग्रंथों का अध्ययन एवं ग्रंथों का रचना करते थे, तात्पर्य इत्यादि लिखते थे, भागवत श्रीमद् भागवतम इत्यादि के, चैतन्य चरितामृत के। फिर ठीक 4 बजे वापस मंगल आरती में आते थे, फिर जपा करते थे भक्तों के साथ चल चल कर, फिर दिन भर भक्तों को संग देते थे और उनको मार्गदर्शन करते थे। दोपहर को थोड़ा सा राजभोग प्रसाद पाकर थोड़ा सा आराम करते थे और उसके बाद फिर से लोगों से मिलना, फिर 8 बजे थोड़ा सा फिर से प्रवचन इत्यादि देकर कार्यक्रम देकर थोड़ा सा आराम, फिर वापस 2 बजे से। चाहे जो कुछ भी हो जाए ये प्रभुपाद जी का दिनचर्या हुआ करते थे। ऐसा लगता था कि प्रभुपाद जी कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल भजन कर रहे हैं, पर अपने आप मंदिरों पे मंदिर, भक्तों अनेक अनेक ग्रंथ का रचना हुआ करता था और भक्त बनते जा रहे थे। ये सब अपने आप हो रहा था। प्रभुपाद जी केवल जपा करते थे, भक्तों के से मिलते थे और ग्रंथों का रचना करते थे। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज के इस चरित्र हम प्रभुपाद जी के जीवन में भी देख सकते हैं और इसी प्रकार से हम इन चरित्रों से अगर हम इनसे प्रेरणा लेकर हमारे जीवन को भी इसी प्रकार से लगाने का प्रयास करें तो हमारा जीवन बड़ा सरल हो जाएगा और सुखमय और आनंदमय और भगवत भक्तिमय हो जाएगा। भौतिक जगत में जब बद्ध अवस्था में रहते हैं हम सोचते हैं कि हमारे घर परिवार और हमारे इस नौकरी इत्यादि को चलाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना होगा। आज हम क्या देखते हैं, लोग सुबह भक्तों से भी पहले उठ जाते हैं, 2 बजे 3 बजे उठ जाते हैं या और स्टेशन में आते हैं और विरार से चर्च गेट आते हैं, फिर वहां मेहनत करके और 10 बजे 11 बजे सोते हैं, इतना मेहनत करते हैं पर उनके जीवन में कोई सुख नहीं, कष्ट पे कष्ट, परेशानी पर परेशानी। उसी जगह पर भक्त लोग भगवान का भजन अगर करने लग जाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उनका भौतिक जीवन भी सरल हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन भी बड़ा सरल हो जाता है। हम अनेक अनेक उदाहरण देख सकते हैं इतिहास में, जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए तो वो खोज रहे थे कहाँ है राधा कुंड, कहाँ है श्याम कुंड, कहाँ है वो स्थान जहाँ मेरे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी उन्होंने अनेक अनेक लीला संपन्न किए। खोज रहे थे, वो लगभग लुप्त हो चुका था। अरिष्टगाम नाम के एक गांव पर आए, वहां पे गन्ने के एक खेत थे। वहां पर जैसे ही वह पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु के अंदर अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे, रोमांच कंप आदि इत्यादि लक्षण दिखाई पड़ने, रोने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, हंसने लगे, ऊपर नीचे और लोटपोट होने लगे। सारे गांव वाले ब्रजवासी देखने लगे और चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे, मैं यहाँ पर जब आता हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है। फिर देखे कि दो छोटे छोटे वहां पे कुंड जैसा था गन्ने के खेत के बीचों बीच। फिर वहां पे गए, फिर इस प्रकार से लक्षण दिखाई पड़े। फिर वो एकदम नजदीक गए तो कहते ये तो साक्षात राधा कुंड है। और वहां पे खूब देर के लिए नाचे गाए, लोटपोट होकर कीर्तन किए, भजन किए, भाव विभोर हो चुके थे। फिर वहां पे भजन करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले। वह उनके उनसे कहे, रघुनाथ आप कृपा करके थोड़ा समय निकाल कर, ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है, भावी पीढ़ी जो है वो इसका लाभ ले, इसलिए आप ऐसा कुछ करो कि इससे बड़े आसानी से लोग आए और इसका दर्शन एवं इसका लाभ ले सके। तब रघुनाथ दास गोस्वामी कहे कि ठीक है, आपका आज्ञा सर्वोपरि। वो भजन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर वो सोचने लगे, चलो अब राधा कुंड को मुझे बहुत ही सुंदर बनाना है, कुछ करना होगा। पर वो करने गए, चंदा इकट्ठा करने गए तो सोच रहा था कि मेरा भजन अब कैसा होगा। फिर वो बहुत बड़े धार्मिक दुविधा में पड़ गए, डायलमा, मैं अपने गुरुजी का आज्ञा पालन करूं या भजन करूं। फिर बाद में बहुत ही वह एक प्रकार से बेचैन हो गए, आध्यात्मिक बेचैनता, और बहुत तीव्रता से भजन करने लगे। हृदय में सोच रहे थे किस प्रकार से राधा कुंड संपन्न होगा और किस प्रकार से श्याम कुंड संपन्न होगा। और इतने में वहां से एक सेठ जी जा रहे थे बद्धिकाश्रम की ओर। वो सेठ जी बद्धिकाश्रम की ओर जा रहे थे, वो रात को धर्मशाला में आराम कर रहे थे, तब भगवान उनके सपने में आए, कहा कि अब आप आगे ऊपर मत जाइए, यहां से नजदीक वृंदावन है, इस वृंदावन में आप जाइए, वहां पे एक बाबा जी मिलेंगे आपको, एक संत मिलेंगे, एक महान वैष्णव भक्त मिलेंगे, इनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्हें मिलिए और उनको आप ये सारा धन दीजिए और कहना कि बद्रीनाथ भगवान ने दिया है, मेरे सपने में आया और कहा आपसे देने के लिए। तो सेठ जी का नींद खुल गया और तुरंत वृंदावन गए। और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत चिंतित थे, कैसे मैं राधा कुंड को संपन्न करूं, कैसे मैं श्याम कुंड को संपन्न करूं, मैं कैसे इस कार्य को पूरी तरह से पूरे कर सकूं, ऐसे सोच ही रहे थे। तो वो सेठ जी आए, कहा कि दंडवत प्रणाम महाराज, ये धन आपके सेवा में है। तो बोला ये क्या है, ये बद्रीनाथ जी ने आपको दिया है, ये मेरा नहीं है, भगवान का है, वो उन्होंने सपने में कहा आपको देने के लिए। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि ठीक है। तुरंत उन्होंने बहुत सारे कारीगरों को बुलाया और कहा कि चलो राधा कुंड कहा यहाँ पे सुंदर सा एक कुंड बनाइए, तो सब लग गए और राधा कुंड वहां पे स्थापित हो गया और श्याम कुंड भी स्थापित हो गया। भजन करते करते ये सब हो गया। अम्बरीश महाराज पूरा विश्व को चला रहे थे, कर क्या रहे थे, सबय मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानु वर्णने, और कुछ कर नहीं रहे थे। ये तीन श्लोकों में उनका भजन का वर्णन आता है और उनका नित्य कार्य सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं, वो भी ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। उसमें भी वो वैष्णव ब्राह्मणों को एकत्रित करके उनके उनसे सलाह मशुरा करते थे, वो भी भक्ति हो गया। तो वो केवल भक्ति ही कर रहे थे और भक्ति करते करते उनके सारे भौतिक कार्य भी पूरे हो गए। तो ऐसे अम्बरीश महाराज का सुंदर चरित्र का हम यहां वर्णन श्रवण कर रहे हैं। तो कहते हैं कि वह सदैव ब्राह्मणों से श्रवण करते थे और वो ब्राह्मण उनसे कहते थे कि किस प्रकार से इस विश्व को चलाना है। इस विश्व को चलाना इतना आसान बात नहीं है। कहते हैं कि इस विश्व में अनेक अनेक जीव हैं और इन जीवों के अंदर अनेक अनेक इच्छाएं हैं और सब अपने अपने इच्छाओं के अनुसार कुछ ना कुछ कार्य करते रहेंगे। पर यहां पे अम्बरीश महाराज कृष्ण भावना भावित होकर क्या कर रहे हैं, सर्व आत्मा भावन, जो भगवान सबके आत्मा में निवास करते हैं ऐसे भगवान का वो भजन कर रहे थे। तो सारे जितने भी जीव हैं वे भी, उन्हें भी भगवान कृष्ण भक्ति में लगा लिए। राजा भक्त बन गया, राजा को सलाह देने वाले भक्त हैं और वो प्रजा को भी कैसे भक्ति करना है वो शिक्षा दे रहे थे। ये मात्र करने से जितने भी विश्व में जीव थे, वृक्ष थे, कीड़े मकोड़े शेर बालू इत्यादि, वे सब भी प्रसन्नचित होकर आनंद में होकर भगवान का भजन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अम्बरीश महाराज के पास कोई कंप्लेन लेकर आया, कहते नहीं, बड़े आसानी से, कोई कठिनाई नहीं। आज हम देखते हैं कि ये विश्व टूट गया है। प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, कहते हैं कि इतना बड़ा विश्व को बड़े आसानी से उन्होंने चलाया और आज हम इस पृथ्वी के एक छोटा सा भाग को चलाने में हमें बहुत कठिनाई हो रही है। दो विश्व में बड़ा युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2, और बहुत प्रयास किया गया था कि किस प्रकार से शांति लेकर आए, शांति के इतने प्रकार के योजना बनाए गए, पर एक भी योजना पूरा नहीं हुआ। पर अम्बरीश महाराज के लिए कहते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञातम माम शांति मृचति। वो भगवान का भजन करते रहे, वो खुद शांति को प्राप्त किए, उनके प्रजा भी शांति को प्राप्त किए और पूरा विश्व आनंद का अनुभव किया। और यहां पे अलग अलग शांति का योजना बनाते जा रहे हैं। पर रोज प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता के तात्पर्य में, रोज हर साल एक नए नए झंडा दिखाई पड़ते हैं। 200 देश थे तो अभी 230 हो गए, 230 के 300 हो गए, यानी कि वो जुड़ने के बदले, एक होने के बदले वो बिखरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, ये शांति के सूत्र को वो जानते नहीं है। लाख हम प्रयास करें शांति लाने के लिए, अगर हम इस शांति सूत्र को नहीं लाएंगे तो शांति कभी नहीं प्राप्त होगा। तो इस बात को इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, सच में विश्व भले कितना भी शांति की योजना लोग निकाले, पर हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने बड़े आसानी से शांति अलग अलग देशों के में लाए। हम जब मायापुर जाते हैं, खास करके मुझसे भक्त लोग कहने लगे, ये नए भक्त हैं वो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इन्हें कृपा करके इंटरनेशनल परिक्रमा पार्टी में मत डालिए, उन्हें हिंदी परिक्रमा पार्टी में डालिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि ये सारे नए भक्त भले वो अंग्रेजी ना जाने, क्योंकि सब भक्तों का चिंता था ये अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो अंग्रेजी में कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे, उनका मन इधर उधर भटक जाएगा और उनका उन्हें वो भक्ति से च्युत हो जाएंगे। तब मैंने कहा कि नहीं, अगर हम प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद जी कौन है, प्रभुपाद जी ने क्या किया है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है, वो अगर हम समझना चाहते हैं तो उनको इंटरनेशनल में आने दीजिए। भले आज इस बार वह हरिकथा का अर्थ ना जाने, पर हरिकथा कथा करने वाले कौन है, शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जी के निष्ठावान भक्तगण हैं, उनके वाणी तो उनके कानों में जाएगा, भले उसका अर्थ ना समझे। प्रभुपाद जी कहते आप मेरे, प्रभुपाद जी के प्रवचन कभी कभी शुरू शुरू में जो नए भक्त लोग थे पाश्चात्य देश के, वो बंगाली एक्सेंट में अंग्रेजी कहते थे तो समझते नहीं थे, तो फिर भी प्रभुपाद जी के क्लास में बैठते बैठते उनका चित्त परिवर्तित होकर वो उन्नत हो गए। भले वो कथा के अर्थ ना जाने, पर आंखों से जब वो देखेंगे कि इतने सारे गोले काले पीले नीले रंग के लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं, तो वो समझेंगे कि विश्व में शांति लाने का तरीका अगर कोई निकाला है तो वो है प्रभुपाद, प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये शांति इस विश्व में लाने का जो कार्य है, बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेता लोग खूब मेहनत कर रहे हैं फिर भी वो सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, पर प्रभुपाद जी ने इस सफलता को प्राप्त किया है। इससे प्रभुपाद जी का महिमा हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, इन भक्तों को कृपा करके इस इंटरनेशनल में रखिए, वो प्रभुपाद जी को जान लेंगे, प्रभुपाद जी कितना महान है वो जान लेंगे। तो ये सच है, प्रभुपाद जी ने को क्या है अगर हम समझना है तो एक बार मायापुर में गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के समय में आना चाहिए। काले पीले गोरे सब नाचेंगे गाएंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं था, अब हो रहा है और प्रभुपाद जी की कृपा से भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा प्रभुपाद जी के छत्र छाया में। यह है प्रभुपाद जी। चैतन्य महाप्रभु कौन है, नवरतम दास ठाकुर की प्रार्थना क्या है वो जानना है, तो नवरतम दास ठाकुर क्या कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार। चैतन्य महाप्रभु का कृपा क्या है वो अगर जानना है तो उसी बात को मैं दोहराऊं, वो अगर जानना है तो हमें नवदीप गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में हमें जाना चाहिए। पतितों को कैसे उन्होंने पावन किया है वो हम जान पाएंगे। सच में हम भारतीय हैं, हम कभी कभी यह समझते हैं या कभी कभी ये भ्रम में चले जाते हैं कि मैं कितने सारे शास्त्र हैं, सारे शास्त्र यही घोषित करता है कि भारत भूमि बड़ा पावन भूमि है और इस पावन भूमि में जन्म लेना बड़ा भाग्य की बात है, उसमें भी मनुष्य देह प्राप्त करना अहो भाग्य की बात है, तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, ये भाव उत्पन्न हो जाता है। हमने सच में यहाँ पे बहुत सारे, खास करके रविवार के प्रीतिभोज कार्यक्रम के अंतर्गत हम श्रवण करते आते हैं, तो कभी कभी कुछ भक्त लोग पूछते हैं ऐसे कैसे हुआ, प्रश्न पूछते हैं ऐसे कैसे हुआ कि हमसे ज्यादा ये पाश्चात्य देश के निवासी लोग भगवत भक्ति में प्रगति कर लिए। प्रश्न पूछा जाता है, इसका उत्तर यही है, पतित पावन हेतु तव अवतार। क्योंकि पाश्चात्य देश के ये लोग में ये भ्रम रहता नहीं है, वो तो स्वीकार कर लेते हैं हम महापापी हैं, हम महापतित हैं, वो सीधा स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जन्म हुआ हमने सीधा नशा को स्वीकार किया, होश आया तो व्यभिचार किया, मांसाहार तो रोज का था और जुआ खेलते रहे। वो हम अपने आप को पतित समझते हैं, और प्रभुपाद जी से मिले तो कहा कि प्रभुपाद जी हमारा सेवक है, सेवक यानी कि इज अवर सेवियर, सेवक सॉरी मैं अंग्रेजी और हिंदी को मिक्स कर रहा हूं, प्रभुपाद जी ने हमें बचाया है, इज अवर सेवियर। तुरंत स्वीकार करते हैं, मैं पतित हूं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, अगर आज हम भक्त हैं तो ये प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, और कृष्ण कौन है हम जानते नहीं, हम इतने पतित हैं। वो पतित करके मानते हैं, पर हम कभी कभी भ्रम में रहते हैं और प्रश्न करते हैं, हमसे आगे वो कैसे गए, भला वो हमसे आगे कैसे गए, वो हमसे आगे इसलिए गए कि वो पतित करके स्वीकार करते हैं, हम रह गए क्योंकि हम सोचते हैं कि हम इस भारत के वासी भाग्यशाली, अति भाग्यशाली, अहोभाग्य महाभाग्य हमारा है। तो यहां तक कि कभी कभी हमारा भाव ये हो जाता है, कुछ कहते हैं कि अरे मैं तो बचपन से चाय कॉफी पिया नहीं, कोई गलत काम नहीं किया, और प्रभुपाद जी के संस्था में हम आए हैं, इस प्रकार से वह व्यवहार करते हैं जैसे कि हम प्रभुपाद जी के बड़े के लिए कुछ बड़ा कार्य करने वाले हैं, प्रभुपाद जी को कुछ भेंट देने वाले हैं। नहीं, ऐसा भाव कभी नहीं होना चाहिए। अगर यह भाव रहेगा तो हर प्रवचन के बाद यही प्रश्न उठेगा, अरे ये पाश्चात्य देश के वासी कैसे हम भारतवासी से आगे भक्ति में निकल गए। अगर ये भाव रहेगा कि मैं भारतीय होके हुए भी भगवान का भक्ति को समझ नहीं पाया, ये जानते हुए कि चैतन्य महाप्रभु पतितों का पावन है, मैं अपने आप को पतित नहीं मान रहा हूं और अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा हूं, मैं पतित होते हुए भी अपने आप को बड़ा महान मान रहा हूं, इससे पता लगता है कि मैं पतितों में भी सबसे बड़ा पतित हूं, सबसे बड़ा पापी हूं। ऐसा भाव जब हो जाएगा तो हमारा भक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और तीव्रता से होने लग जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का कृपा या प्रभुपाद जी कौन है ये जानना है तो हमें, मैं कह रहा था कि नवदीप मंडल परिक्रमा में जानना चाहिए, किस प्रकार से सारे विश्व में शांति लाना है, ये फॉर्मूला चैतन्य भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और व्यावहारिक रूप में प्रभुपाद जी ने दिया है, और उसी फॉर्मूला जो है अम्बरीश महाराज अपने जीवन में उतारे थे और बड़े सुंदर रूप से पूरे विश्व को चला रहे थे, कोई मेहनत नहीं, वो केवल भजन कर रहे थे और अपने आप बाकी सब हो रहा था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, और बाकी सब अपने आप हो रहा था, उनको कुछ नहीं करना था। प्रभुपाद जी भी ग्रंथ लिखते हैं, जपा कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, भक्तों से मिल रहे हैं, भगवद गीता में से कुछ बोल रहे हैं, जर्मन में कुछ हो रहा है, वहां पे हल्ला हो रहा है कि इस कौन हरे कृष्ण वाला चोर है, नो प्रॉब्लम हरे कृष्ण जपो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व, यहाँ पे रास बिहारी का मंदिर को तोड़ा जा रहा है, प्रभुपाद जी बोला नो प्रॉब्लम जपा करो हरे कृष्णा, तो वो भी सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से भजन के बल पर सारे भौतिक कार्यों को पूरा किए थे। देखिए हम भक्त लोग भी क्या करते हैं, मंदिर के निवासी भक्त लोग हम क्या करते हैं, ब्रीफकेस लेके इधर उधर घूमते नहीं है, अगर घूमते भी है तो केवल प्रचार करने के लिए जाते हैं, ये लीजिए और कृष्ण को देने के लिए। हम सुबह उठते हैं 4 बजे 3:30 बजे या 3 बजे, फिर क्या करते हैं, मंगल आरती में नाचते हैं, तुलसी आरती में नाचते हैं, फिर बाद में जपा करते हैं, फिर उसके बाद श्रृंगार आरती में नाचते हैं, गुरु वंदना में नाचते हैं, फिर भागवत क्लास में सुनते हैं, उसके बाद हमने कुछ किया नहीं, सुंदर रोटी चपाती अच्छे अच्छे पकवान गरम राइस भोग लगाकर गवदत्त प्रभु हमारे सामने प्रकट करते हैं। और ये इतना अच्छा प्रसाद पाने के लिए लोग इतना मेहनत करते हैं, पर उनके नसीब में वो सब नहीं है। हमने कुछ नहीं किया फिर भी ये सब मिलता है। भगवान के भजन, विश्वास, भगवान हर एक प्राणी को खिला रहे हैं, कबूतर चिड़िया हाथी चींटी सबको खिला रहे हैं। तो जो भगवान का भक्ति नहीं कर, जो भगवान का भक्ति करेगा उनको क्यों नहीं भगवान खिलाएंगे। पर हम इतना बुद्धिमान हो गए कि नहीं मुझे कुछ करना होगा, तो करते रहिए। इतना ही नहीं, हमने पद्मनाभ प्रभु बता रहे थे इस रविवार के भागवत कक्ष में सत्र में कि मैं तो फुल टाइम डिवोटीज का वर्णन किए, पर पद्मनाभ प्रभु कांग्रेगेशन भक्तों का कह रहे थे, इतने सारे कांग्रेगेशन भक्त वो जानते हैं कि वो लोग कुछ कर नहीं रहे, वो भगवान का भजन अच्छी तरह से कर रहे हैं और 3-4 घंटे अपना कार्य कर रहे हैं, फिर भी वो अच्छे अच्छे प्रसाद पा रहे हैं और बहुत सुंदर उनका जीवन चल रहा है। उन्होंने अपने ही जीवन के बारे में बताया, पिछले 15 साल में वो केवल 3 साल काम किए और 12 साल केवल हरे कृष्ण के, फिर भी उनका परिवार सुंदर रूप में चल रहा है। तो ये भगवान का भजन अगर को महत्व करेंगे, बाकी सब ठीक ठीक अपने आप लाइन में आ जाएगा। एक सुंदर हिंदी कहावत है, अगर हम भगवान के नाम में है तो भगवान हमारे काम में है। अगर हम भगवान के नाम में है, हरे कृष्णा में है, तो भगवान हमारे काम में, घर का काम नौकरी ये हो। अगर हम अपने काम में है, अपने घर के काम में नौकरी में, अगर हम अपने काम में, तो भगवान अपने धाम में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रील अम्बरीश महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, गौर हरि प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद जी की जय। बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का, बड़े प्रेम से श्रवण किए, बड़े सरल कथा है, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।